તારીખ 17/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 550 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 68
इतने परिणाम में तो कोई खास आज लिखे कल लिखे या परसों लिखे तो बात तो उतनी कोई वजनदार नहीं होने पड़ती, क्यों इतना एक दिन का आगे पीछे कर लिया इससे ऐसा परिणाम हुआ तो जान करके न लिखते हैं न लिखना शुरू हो जाएगी। तो समझा दर्शक है कि वचन जो है तो परिणाम की और प्रवृत्ति की जो सहजता है उनको दर्शाते हैं। गत परम दिन के लिखे हुए पत्र में जो आपको 548 वाला पढ़ा उस पत्र में जो गंभीर आशय लिखा है यह विचारवान जीव को आत्मा के परम हितस्वी हुए ऐसा आशय है। आशय मैंने क्या इरादा, हमारा जो इरादा है पत्र लिखने में उसमें गंभीरता है और गंभीरता उस प्रकार की है कि अगर कोई इस विषय को अधिक विचारवान बने आत्महित के लक्ष्य से विचार करेगा तो उनको बहुत आत्मलाभ का कारण होता है, हो सकता है ऐसा है। यह उद्देश्य हमने आपको बहुत बार सहन सहन किया है कि आप अपने संयोग की प्रतिकूलता के विषय में जितने चिंतित हो ऐसा ऐसा चिंतित होना आपके लिए नया कर्म का कारण होता है और दोष मार्ग में रुकावट होने का भी यह कारण था। इसलिए ऐसे चिंतित नहीं होने के लिए आपको सहज सहज बहुत बार ऐसे बात में आगे भी फिर भी यह उपदेश आजीविका के कष्ट क्लेश से आपको बहुत बार विसर्जन हुआ है अथवा हो जाना है। आजीविका का कष्ट है यानी जो दायित्व है आर्थिक दायित्व है इसका जो कष्ट है उसकी जो वेदना है दुख है उस दुख के कारण से आप हमारी बात को भूल जाते हैं, भूल सहज भूलना हो जाता है, भूलते हैं और सहज भूलना हो जाता है, यही कारण है। तो बात है कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, शायद हम सोच भी नहीं सकते उतने कमजोर थे, एकदम क्रिटिकल कंडीशन में थे, जैसे खान पीन की व्यवस्था रोटी की व्यवस्था शायद नहीं बनेगी तो, और अगर ऐसा होगा तो हमारी इज्जत का भी क्या होगा। दो बात है, गृहस्थ को अगर ऐसी कमजोर परिस्थिति में भी हो जाती है तो हम भारत के रखना तो जो बात सामने आती है कि एक परिवार वाले को क्या खिलाएंगे, हम अगर हम खिलाने के लिए जो भी अनाज वगैरह लाना चाहते हैं ला नहीं पाएंगे तो क्या है, और हम ऐसा नहीं करते हैं तो लोग में समाज में गांव में उतरना होता है, बात हाउस हो जाती है, घर की बात बार होती है, इज्जत का सवाल पैदा हो जाता है, तो उसका टेंशन आदमी को आए बिना नहीं रहता। सामान्य तौर से ऐसा ही बनता है, जबकि यह एक स्पेशल केस है, विशेष बात है। तो राम भाई एक ऐसे मुमुक्षु थे जो कृपालु देव जैसे महाज्ञानी के बहुत निकट परिचयी थे, कोई भी आदमी होता है तो उसको ऐसा ही टेंशन आता है, लेकिन ज्ञानी के समूह में रहने वाले को भी ऐसा ही हुए तो फिर उसको समझना क्या लाभ हुआ? यानी कौन सी विशेषता हुई इसमें? तो जब दूसरे में उसका कोई अंदर नहीं रहता, जब कोई तकलीफ आती है, कोई भी मनुष्य तकलीफ पाता है तो उनको अवश्य अवश्य टेंशन आता है, तो सामान्य बात है। लेकिन तकलीफ पाने पर उनके टेंशन नहीं हो रहे, ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है? कहां हो सकती है? यानी के समूह में आने में से और उसके उपदेश की प्राप्ति होने से कोई भी प्रकार का प्रतिकूल संयोग है तो धैर्य से रोक सकते हैं, वेदन कर सकते हैं। धैर्य से मैंने बिना क्लेश पाए ऐसा हो सकता है, तो कोई परिस्थिति का अपना प्रकार देश में चला है। फिर भी यह उद्देश्य आजीविका के कष्ट क्लेश से आपको बहुत बार विसर्जन हुआ है अथवा विसर्जन हो जाता है, चयन हो जाता है। हमारे प्रति मावितर, मैंने मावितर मैंने एक माँ का दो लड़का होता है तो उसमें भेदभाव नहीं होता है, उसको मावितर कहते हैं गुजराती में। मैंने सगे भाई से भी अधिक प्रेम है आपस में ऐसा कहते हैं। हमारे प्रति भाई से भाई जितना आपका भक्तिभाव है, प्रेम नहीं है भक्तिभाव है, प्रेम भक्ति है तो भक्ति, इसलिए आपको लिखने में तकलीफ नहीं है, अड़चन नहीं है, हमको हिचकिचाहट नहीं होता है। अगर आपकी कमजोरी की कोई बात हम बता दें तो आपको दुख होगा ऐसा हमको नहीं लगता है, यानी कि हमें विश्वास है कि आपके दोष की कमजोरी की कोई बात हम कहेंगे आपको बिल्कुल दुख नहीं लगेगा, आपको बंदुख नहीं होगा, आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी, टेंशन नहीं आएगा कि ये क्या मेरे लिए कह रहे हैं। इतना भक्तिभाव आपका है कि आप जो भी मंत्री कहेंगे अब उसका सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, इसलिए आपको लिखने लिखने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, अड़चन नहीं है, ऐसा गिन करके हम ऐसा गिनते हैं, ऐसा गिन करके तथा दुख सहन करने की असमर्थता के कारण से हमारे पास से उस व्यवहार की, इस प्रकार के व्यवहार की याचना दो प्रकार से आपसे हुई है। क्या है? हमको लिखने में कोई अड़चन नहीं है, आपको आपके लिखने में आप हमके लिए लिखते हैं इसलिए कि आपके और हमारे बीच में अंतर नहीं है। क्या बात है? सुभाष भाई को भी अपनी परिस्थिति लिखने में कोई संकोच नहीं होता था और कृपालु लोगों को भी उनको लिखने में कोई तकलीफ नहीं पाते थे, जो दोनों आपस में कोई अंतर नहीं रखते थे, उतनी आत्मीयता थी आपस में। ऐसा गिन करके सुभाष भाई ने अपने दुख सहन करने की असमर्थता के कारण, क्या उतनी योग्यता नहीं थी कि कोई भी प्रकार के प्रतिकूलता को संभाव से उसको भोग ले, वेदन करने में इतनी सहनशीलता नहीं हुई थी, मुमुक्षु थे वो, इस प्रकार की कमजोरी थी, तो उस समर्थता के कारण हमारे पास से ऐसे व्यवहार की याचना दो प्रकार से तुम्हारे से हुई है, दो प्रकार की याचना की है। मदद करने के लिए कि हमारी प्रतिकूलता में आप हमें मदद कीजिए। किस प्रकार से आप हमें मदद कर सकते हो वो भी उन्होंने लिखा। एक तो कोई सिद्धि योग से दुख मिटा सके ऐसे आशय की, ऐसे इरादा है कि आप तो चमत्कारी पुरुष हैं, ज्ञानी हैं, उतना ही नहीं आपके पास कुछ लब्धियां भी हैं। अगर आपके पास कुछ लब्धि है तो हमारी दरिद्रता मिटा देना, कुछ न कुछ ऐसा कोई कर दे जिससे हमें कोई टेंशन में आए, हमें कोई आतुरता नहीं हो और हम नए कर्म बांधने से छूट जाए। एक तो इस प्रकार की आपने याचना की है। दूसरा, दूसरी याचना कुछ व्यापार रोजगार आदि के, या तो चमत्कार से कुछ हमें दे दो, या तो कोई ऐसा व्यापार रोजगार हमको बता दो कि जिससे हमें बहुत कमाई हो जाए हमारी, तो हमारे ये जो विकल्प है आजीविका के वो हमारे छूट जाए। दो प्रकार की याचना आपने हमें हमारे से की है। दो में से एक भी याचना आपके हमारे पास हो, यह तुम्हारे आत्मा के हित का कारण को अवरोध करने वाले हैं और अनुक्रमे मलिन वासना का हेतु होने वाली है, क्योंकि जिस भूमिका में जो प्रतीत नहीं होता है यह जीव करता है तो उस भूमिका का उसको सहज त्याग हो जाता है, उसमें कुछ संदेह नहीं है। क्या कि मुमुक्ष होकर के ज्ञानी के पास कोई संयोग सुधार की याचना करता है, संयोग सुधार की मदद मांगता है, तो उसको इस भूमिका का त्याग हो जाता है, उस भूमिका उसको छूट जाती है। यानी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के या अवरोधक परिस्थिति पैदा उसको हो जाती है। इस विषय में हम लोग कभी आपस में चर्चा करते हैं कि सौभाग्य भाई को आर्थिक दरिद्रता बहुत थी, पर सौभाग्य भाई को बॉम्बे में अच्छी कमाई भी थी, अच्छे पैसे कमाए भी थे, तो उनको साधन में वात्सल्य के नाते में पैसे खुद क्यों नहीं भेजे। हम आपस में इस बात को साफ करने के लिए और स्पष्ट करने के लिए प्रश्न होता है कि ऐसा क्यों नहीं किया। तो ऐसे कोई संयोग के अनुकूलता के आधार बुद्धि से धर्म नहीं मिला है। क्या धर्म में राग द्वेष मोह का मिट जाना, विद्रा भाव का होना, तो संयोग की प्रतिकूलता में जिसके परिणाम ठीक नहीं रहते हैं और अनुकूलता का आधार लेते हैं तो आत्मस्वरूप का आधार लेने का अवकाश मिल जाता है। संयोग के अनुकूल प्रतिकूलता के आधार से तो सारे जगत के जीव अपना जीवन बिताते हैं। फिर ज्ञानी ने और ज्ञानी के मुमुक्षु ने अगर ऐसा ही हो तो फिर क्या अंतर रहा होगा, दोनों में कोई अंतर रहता नहीं है। हर हालत में सही मुमुक्षु होते, योग्यता मुमुक्षु होते या ज्ञानी होते हैं तो हर हालत में दुखी नहीं होते। दुखी नहीं होने का ज्ञान साधन उनके पास होता है और ये ज्ञान साधन आत्मज्ञान है। वो आत्मज्ञान से सभी संयोग से अपना भिन्न अनुभव करते हुए दुखी नहीं होते कोई भी हालत। चार गति में से कहीं भी हो वो सुखी होते हैं, दुखी नहीं होते। दरिद्रता का दुख तो सारी दुनिया महसूस करती है, रोग पीड़ा बाधा आती है तो उसका दुख भी सारी दुनिया अनुभव करती है। तो फिर ज्ञानी को भी ऐसा हो तो दोनों में क्या अंतर रहा? तो कोई अंतर इसमें नहीं रहता। तो बाबू जी के जीवन परिचय में आता है, 70 लाख की कलकत्ता की आबादी में एक हम ही सुखी है, एक हम ही सुखी है ऐसा महसूस करते थे। कोई तो कल्पना भी आती नहीं है, ये सुख भीतर में से आ रहा है। सुख कभी अनुकूलता के संयोग से आता नहीं, पर दुख कभी प्रतिकूलता के कारण से किसी को आता नहीं। ये वस्तु स्थिति है, क्योंकि कोई पदार्थ सुख देने में समर्थ नहीं, न कोई पदार्थ दुख देने में भी समर्थ है। लेकिन सुख दुख की जो उपाधि है ये उतने ही कारण से है कि ये मेरा उदय है। क्या इस प्रकार का उदय जो मेरा उदय है बस यही उपाधि का और दुख का कारण होता है, और उसी कारण से चिंतित अवस्था में ही जीवन गुजरता है। तो उपाधि से हट सकते नहीं है, क्योंकि जो चीज जीव की नहीं है, जीव रूप भी नहीं है, जीव स्वरूप भी नहीं है, उसको अपने में मिला दिया, मिलावट कर दिया, तो उपाधि आए बिना रहेगी, ये उपाधि का दुख चालू हो जाएगा। और जिसने सिर्फ ऐसा सोचा कि मेरी कोई चीज नहीं है, पूर्व प्रारब्ध से कोई व्यवस्था में मुझे रखा गया है, मैं तो उसका सिर्फ व्यवस्था करने वाला हूं, उससे ज्यादा मेरा कोई अधिकार उस पर नहीं है, तो कोई उसको उतनी उपाधि टेंशन आने वाला नहीं है। जैसे मैनेजर को नहीं आता है वैसे धनी को आएगा। देखिए काम तो काम करने वाले करते हैं, लेकिन उपाधि कौन करते हैं? काम तो स्टाफ लोग करते हैं, उपाधि कौन करता है? जो धनी होता है उपाधि करता है। बीमार होगा घर पे लेकर रहना पड़ेगा, लेकिन उपाधि लेते लेते करेगा। वो काम हुआ कि नहीं हुआ, तो कैसे हुआ, ठीक हुआ, सही हुआ, क्या हुआ, बिल्डिंग है तो क्या बात है, सब प्रकार की उपाधि घर पे लेते हुए भी आ जाएगी। अरे वही आदमी मैनेजर बन जाता है तो कोई तकलीफ नहीं है। एक कुदरत व्यवस्था मेरे प्रारंभ के ऐसे बना दी है कि मुझे इस परिस्थिति में चलना पड़ता है, तो सिर्फ मैं इसकी व्यवस्था संभालने वाला होगा। तो ये उपाधि एकदम हल्का हल्का हल्की उपाधि हो जाएगी, उतना टेंशन उसको आने वाला नहीं, और स्थिर चित्त से वो काम कर पाएगा। जो भी कार्य अस्थिर चित्त से होता है वही कार्य स्थिर चित्त से होता है तो क्या फर्क पड़ता है? हम अच्छी तरह जान सकते हैं कि अंडर टेंशन कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो सही नहीं होता है, तो कुछ न कुछ प्रकार की गड़बड़ उसमें रह जाती है। और शांत चित्त से कोई विचार किया जाता है तो सही विचार किया जाता है। इसलिए कैसे चलना चाहिए हर परिस्थिति में हर हालत में, क्योंकि हमारे पास आपकी जो यातना हुई यह तुम्हारा आत्मा को हित के कारण का रोधक है, अवरोधक है। आत्म कल्याण में ये बाधा कैसे आएगी कि आधार बुद्धि तो अनादि से है ही संसारी जीव को, तो कैसे बिना जीवन नहीं चलता है, इसके बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता, इसके बिना नहीं चलता। यह आधार बुद्धि तो है ही होगा जिसे, और यही जन्मों का और परिभ्रमण का कारण है। आत्मा का आधार लेकर के जो शांत सुखमय जीवन जीने का है वो तो आधार बुद्धि से तो होता नहीं, पर के आधार बुद्धि से, दूसरे के आधार बुद्धि से तो होता नहीं। तो अनुकूलता में भी आधार लेता है जी, प्रतिकूलता में भी आधारित लेता है संयोग का। इस आधार बुद्धि को और पुष्ट बनाने ऐसा ज्ञानी कभी करते नहीं है। ज्ञानी तो आधार बुद्धि को छुड़ा करके सुखी करेंगे, पर आधार बुद्धि पुष्ट करेंगे तो और सुखी हो जाएगा। संयोग ठीक होने पर भी सुखी नहीं होता है, यही कारण है इसका। चर्चा चली थी कि आपको प्रतिकूलता नहीं है फिर भी शांति महसूस नहीं करते हो, इसका कारण क्या? कि जिस पदार्थों में से सुख लेने का हमने प्रयास किया और सुख मिला नहीं, तो शांति कहां से होगी? जहां से सुख मिलने के लिए प्रयास होता है और प्रयास होने के बावजूद भी सुख नहीं मिलता है, तो शांति के बजाय अशांति आएगी ही आएगी। पर ऐसा तीव्र रस से बहुत प्रयत्न किया, ऐसा प्रयत्न बहुत लंबे काल तक 25-50 साल कर लिया और तीव्र रस से किया, तो शांति की एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि इस स्थिति को मिटाने के लिए बहुत तकलीफ जाती है। इस स्थिति के मिटाने वाला ज्ञानी का उपदेश सुनने पर भी उस उपदेश के असर नहीं पहुंचती है, इस स्थिति ये आलम हो जाती है। जड़ के संग से चैतन्य स्वरूपी जीव की शांति का खून हो जाता है, तो जीव नहीं रहता है, मुर्दा बन जाता है, जड़ हो जाता है। जीव जीव नहीं रह करके जड़ के संग में जड़ कैसा हो जाता है, और हां दुख के सिवा इसका कोई दूसरा नतीजा नहीं होता। ये आत्महित के अवरोधन कारण है, और आगे जाकर के अनुक्रम मैंने आगे जाकर के मलिन वासना का हेतु होता है। मलिन वासना मैंने क्या कि थोड़े संयोग का अवसर हुए, थोड़ी प्रतिकूलता तो मिली, अब बाकी की मिटाए, इतनी मिट्टी तो और बाकी की मिटाए, इतनी मिट्टी तो और बाकी की मिटाए। जैसे वासना एक ऐसी चीज है तो जीव को बार बार उसके परिणाम लग जाते हैं, इसी को बार बार कहते हैं। इधर भी ऐसा हो जाएगा, क्योंकि प्रतिकूलता अनुकूलता का कोई दुनिया में स्टैंडर्ड नहीं है। कौन से स्टैंडर्ड को हम अनुकूलता प्रतिकूलता कहेंगे, इसका कोई गौरव है नहीं। तो थोड़ा अनुकूलता आने पर भी ज्यादा अनुकूलता मिल जाए, उतने आने पर और मिल जाए, इतने आने पर और मिल जाए, नहीं मिली वो प्रतिकूलता, जितने नहीं मिली उतने प्रतिकूलता। तो ये जो बात है उतने लंबी छोड़ी हो जाएगी कि इसका कोई अंत रहता नहीं है। पर किसी को भी आप पूछ लीजिए कि आपको कितना चाहिए संयोग, उसका कोई लिमिट है क्या? तो बिना सोचे भी इसका अभिप्राय ज्ञानी जानते हैं कि अनलिमिटेड हमें मिलना चाहिए, लिमिटेड नहीं मिलना चाहिए हमको, अनलिमिटेड मिलना चाहिए। उस प्रकार का अभिप्राय हरेक जी का रहता है, पर इसलिए कहीं उसको शांति नहीं रहती है, किसी कारण से वो अशांति को भोगता रहता है हर हाल में। कितनी भी अनुकूलता मिलती है अशांति ही अशांति बनी रहती है। हम कभी एक प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि अशांति जिसको मालूम पड़ती है ऐसे को, इसमें दो प्रकार के जीव होते हैं। एक तो जिसको बहुत प्राप्ति का नशा चढ़ जाता है उसको तो शांति अशांति का भान नहीं रहता है, उसकी तो दौड़ उतनी रहती है कि सारी दुनिया की संपत्ति अपने घर पर उसे रुक रहे थे, उसकी जो दौड़ होती है उसमें वो उतनी अशांति को लेकर के चलता है जीवन में, उसको उसका पता नहीं चलता है। तो उसके लिए तो ये बात हमारी बात जो है कहीं भी स्पष्ट करने वाली नहीं है, इसके लिए यह उसकी चर्चा को करते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं कि जिनको ये लगता है कि इतने सब कुछ मिलने पर भी हम शांत नहीं है, हम सुखी नहीं है, कि हमें शांति के लिए, शांति खरीदने के लिए हमें क्या देना चाहिए। सुख शांति हमें चाहिए, इसको हम खरीद कर सकते हैं, तो खरीद कर सकते हैं तो किस मात्रा में कितना क्या देना पड़ेगा आपको, इतने शांति के लिए, शांति के लिए कोई मात्रा ले लेगा, तो इतने शांति के लिए उतना देना है, तो हिसाब किताब इसका कोई आपके पास हाँ नहीं है देखिए तो दूसरा सस्ता भोजन ले ले हमने लाइक की है कि जो शक्कर है वो तो गरीब खाएगा तो मीठी लगेगी, अमीर खाएगा तो भी मीठी लगेगी। वहां पर गरीब को मीठी कम लगती है, अमीर को ज्यादा मीठी लगती है, ऐसा तो होता है। तो प्रभाव तो जो है सो है इसका तो अनुभव एक का ही होता है, उसमें से बाहरी परिस्थिति का कारण तो बनता है। ठीक उसी तरह एक दरिद्र आदमी को अपनी झोंपड़ी में मजदूरी करने के बाद आराम से नींद आ जाती है, चाहे उसके पास दिखाने के लिए बेटा नहीं है, बिना बंदा हो ऐसे ही सो जाता है गरीब। और एक शेख साहूकार को जिसमें सौर रुई डाल करके जो पढ़ाई बनाते हैं, गड्ढे बनाते हैं इतने बड़े बड़े, उसमें भी ऐसे ऐसे होते होते कोई नींद नहीं आती, कभी इधर होता है कभी इधर होता है कभी इधर होता है, कभी गड्ढा नींद ना दे ना देगा क्या। नींद का सुख गिनने में आता है संसार में, संसार होते हैं आपको बात अलग है, लेकिन नींद का सुख तो गद्दा पलन कौन सी चीज देगा, कौन लादेगा क्या उसको, जिसको नहीं आएंगे उसमें अच्छे से अच्छे पलन गड्ढे में जिंद नहीं आएंगे, और जिसको आएंगे तो गरीब के भी ऐसा आप कैसे हो जाएगा। ऐसे जो शांति है, अगर कुछ सोना से पैसे से जहरात से कैसे भी अगर खरीदी जा सकते हैं तो 25 लाख में कितनी शांति मिले, उतनी हम 50 लाख में ले लेते हैं, ऐसे जो होती है खरीद जा सकते हैं, तो इसकी कोई शांति मिलाने की कार्य पद्धति कोई अलग है, ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। यहां तो कहते हैं कि आपको आगे जाकर के ये मलिन वासना बहुत मिलाना बहुत मिलाना बहुत ये बात हो जाएगी, क्योंकि जिस भूमिका में मैंने आपकी भूमिका है वो मुख्य की भूमिका है, जो नहीं होना चाहिए अगर ये ऐसे परिणाम करते हैं ऐसे भाव करते हैं तो उस भूमिका छूट जाती है, उस भूमिका का त्याग क्या हो जाता है, मतलब छूट जाती है मेरे योग्यता छूट जाती है, छूट जाती है जिस भूमिका में जैसे परिणाम होना चाहिए उस भूमिका में ऐसे परिणाम अगर नहीं होता है तो ये भूमिका छूट जाती है। उसमें कोई संदेश नहीं है, आपके हमारे प्रति निष्काम भक्ति चाहिए होनी चाहिए,
कोई सामने वाले नहीं। हमको आपसे कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसे कामना वाले भक्ति हमारे प्रति आपको होने चाहिए। आपको हमारे प्रति निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और चाहे जितना दुख मेरे प्रति खुलता, चाहे जितना दुख हो, फिर भी धीरज से धैर्य से वेदना चाहिए। आपको इसके लिए धैर्य होना चाहिए। आपकी भूमिका की भूमिका ऐसे है, ऐसी भूमिका में धीरज होना यही सबसे अच्छा है। अधीरज से आतुरता करके कोई काम करना ठीक नहीं। अगर ऐसा न बने, यानी ऐसी धीरज नहीं रहे, तो भी एक अक्षर हमारे पास तो उसकी सूचना भी आपको नहीं कर रही है। एक अक्षर भी आपको क्यों कि आपकी चिंतित दशा देख करके हमें घबराहट होती है कि अरे इस जीव की योग्यता तो नहीं छिड़ जाएगी, इसमें बहुत बड़ी आपत्ति हो जाएगी। इसकी योग्यता छिड़ जाएगी तो बहुत लंबे काल तक ये मोक्ष मार्ग के समीप नहीं आ सकेगा, मुक्तता में नहीं आ सकेगा। इसलिए मुमुक्षुता की योग्यता न छूटे, इस कारण से उसको मार्गदर्शन देते हैं। कितने करोना मदद करके, पैसा दे करके, कुछ भी दे करके उनके आधार पति को पुष्टि नहीं करते हैं। ज्यादा प्रतिकूलता होंगे तो ऐसे इनको किस प्रकार से मदद करके कि ऐसा उपदेश करते हैं कि उनके परिणाम गिर जाएंगे, उसके जो परिणाम है उसकी तंदुरुस्ती बने रहे, कर्म बंधन नए नहीं हो और वह संसार से गिर जाए। ये संसार से चिरने की योग्यता छूट जाएगी तो कभी सरकार हो जाए तो घबराहट का विषय हो गया। जैसा जैसा आपको घबराहट होता है ये बात हमको घबराहट होती है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, इतने आतुलता हो, इतनी आतुलता, ये आतुलता होने योग्य। ऐसा न बने, माने धीरज नहीं रहे, तो एक अक्षर हमारे पास से, हमारे पास तो उसकी सूचना भी एक अक्षर में भी होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये बात हमारे पास आपके नहीं है, नहीं हो, इसमें आपका कल्याण है, पर ऐसी बात करने में तो आपका अकल्याण हो जाएगा, कल्याण होगा। बहुत विचित्र क्षमता है, उन्होंने मोक्ष मार्ग पर लिया है और बहुत नाजुक परिस्थिति में लिया है। मामूली प्रतिकूलता नहीं थी, धीरज न रह सके ऐसी परिस्थिति में भी उनको इस तरह से संभाला है, इस तरह से संभाला है कि मोक्ष मार्ग तक गया है, तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति उसको हो गई है। अनंत जन्मों में उनका नाश हो जाए ऐसी परिस्थिति में होने के यह आपको सर्वांग योग्य है। कितने यह आपको सर्वांग योग्य है, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा यह आपको सर्वांग योग्य है। और आपको ऐसी स्थिति में देखने की हमारी इच्छा है, और हमारी इच्छा यही है कि हम आपको ऐसी स्थिति में देखें। आप यात्रा करते रहो, ऐसी स्थिति में हम आपको देखना नहीं चाहते। हमने लिखा है कि आत्मा के अनंत आनंद के आगे ये प्रतिकूलता कुछ चीज ही नहीं है, संयोग की प्रतिकूलता कोई चीज होती ही नहीं है। ऐसा आत्मा में शिक्षक मिलता है, आनंद मिलता है। इसका हम प्रयास करें, यहां संयोग बिताने का प्रयास करें, बस इसका तोलन हमको करना है। जो कोई बात को तोलने है तो हमारा पुल कहां जाना चाहिए, कि हमें आत्मा में से सुख लेना है या जिस संयोग में से सुख नहीं आता है उस संयोग जुटाने के पीछे हमारे आत्मा के समय शक्ति का खर्च कर देना है। बस इतना विवेक करने का यहां पर जरूरत है। और आपको ऐसी ही स्थिति में देखने की जितनी हमारी इच्छा है और जितना आपके यह स्थिति में हित है, यह पत्र से या वचन से हमारे से बता सकने के योग्य नहीं है, बता नहीं सकते। हमको ऐसी स्थिति में आपको देखना है कि आप अपने ताकत से, अपने बल से, अपने जोर से हर स्थिति में आपके लिए सुने हो। और ऐसी स्थिति में आपका हित है तो कितना हित है, कितना इसमें कल्याण भरा हुआ है, ये परम शांति के लिए वाली बात है। मनुष्यता की जो बात है वो बात हम आपको वचन से या पत्र से आपको बता नहीं सकते। मैंने आप एक ऐसी परिस्थिति में गुजर रहे हो कि अगर आप फेल हो जाएंगे तो हमें इसके लिए फेल हो जाएंगे, अगर सक्सेस हो जाएंगे तो हमें इसके लिए सक्सेस हो जाएंगे। तो हम जो सूचना लिखते हैं हमारे आज्ञा अनुसार आप चलेंगे तो आपका कितना हित होगा ये हम वचन से या पत्र से आपको बता नहीं सकते, इतना ही हो जाएगा। और ऐसी हमारी इस इच्छा है, इस स्थिति में हम आपको देखना चाहते हैं। परंतु पूर्व के पूरे ऐसे ही उदय के कारण से आपको यह बात विसर्जन होगी और हमको फिर से जनाने की इच्छा रखना करते हैं। तो मैं आगे की बात आपको लिखी है, आपके प्रतिकूलता के उदय में उतने परिणाम खींचे रहते हैं, हमारी बात को आप भूल जाते हैं और बार बार हमको आपकी प्रतिकूलता का निवेदन करने की इच्छा आपको आप करते हैं। आगे कहते हैं कि यह दो प्रकार की याचना है। प्रथम जो लिखी है यह याचना को कोई भी निकट भोगी जीव को करने ही नहीं चाहिए, कोई चमत्कार से, कोई लब्धि से संयोग की प्रतिकूलता मिट जाए और अनुकूलता हो जाए, ऐसी याचना निकट होने की नहीं करते हैं, दूर होने की कर लेते हैं। क्या इसका मतलब क्या है कि ऐसी याचना कोई करते हैं वो दूर होने के होते हैं, निकट होने ऐसी याचना करते हैं नहीं। चमत्कार ज्योतिष मंत्र तंत्र करते हैं ना सब, तो सब इतनी गड़बड़ी है कि निकट होने के ऐसे परिणाम होते नहीं। प्रतिकूलता को हटाने के लिए दर्शन की बहुत वृद्धि हो जाए, ऐसे इस प्रकार के परिणाम नदी को मोक्ष जाने वाले को तो होते ही नहीं। निकट भवि है समीप को ले जाने वाले जीव को तो होते ही नहीं, जिसका संसार कम हो रहा रह गया उसको ऐसे परिणाम नहीं होते। प्रतिकूलता आती है लेकिन ऐसे परिणाम नहीं होते। और अल्प मात्रा में हो तो भी उसे जड़ से काट देनी चाहिए, मूल से उसका चेक कर देना। अगर कुछ मात्रा में थोड़ा परिणाम हो जाए, विचलित हो जाए तो उसको जड़ से काटो, ऐसे परिणाम को स्वप्न में भी इच्छा क्योंकि लोगों पर विश्वास का यह सबल दीज है ऐसा तीर्थंकर आदि का निश्चय है। तो भगवान को भी समझा है इसमें तीव्र मिथ्यात्व हो जाएगा तो लौकिक मिथ्यात्व नहीं है लोकोत्तर मिथ्यात्व है सामान्य मिथ्यात्व नहीं है तो लुप्त होता है ऐसा नहीं है। सामान्य मिथ्यात्व तो देहात्म बुद्धि वगैरह होती है सामान्य तो ऐसा नहीं है। चलो भी गुंडा हो गया कर लो कुछ कमाई कर लो इससे कुछ प्रतिकूलता खत्म हो जाएगी इतना सामान्य मिथ्यात्व नहीं है। ये तो मंत्र तंत्रों में जाना चमत्कार में जाना लोकोत्तर मिथ्यात्व है बहुत मिथ्यात्व है। क्या कहीं वो तो अन्यमति में यह सब होता है आज कल जैनियों में होने लगा है ये सब होता है अन्यमति में होगा था क्योंकि वहां तो इस प्रकार का उद्देश्य नहीं है लेकिन जो जैन शास्त्र है उसमें तो ऐसी बात बहुत साफ है लेकिन आज तो आजकल तो शास्त्र तो पढ़ते नहीं समझते नहीं तो बहुत जैसा अनुमति को हो जाता है तीव्र मिथ्या ऐसा आज कहलाने वाले जैन को भी होता है। वो कहलाने वाले जैन है वास्तव में अनुमति ही है जैन नहीं क्या कहते हैं कि अल्प मात्रा में लोग को भी उसे मूल से भी काट देनी चाहिए क्योंकि लोकोत्तर मिथ्यात्व का ये बलवान भी है ऐसा तीर्थंकर आदि का निश्चय है यह हमको सप्रमाण लगता है। भगवान का यह निश्चय हमको यथार्थ लगता है। भगवान ने यह बात नहीं कही है हमको भी ऐसी लगती है मेरे भगवान के अभिप्राय में और हमारे अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है। किसी भी कहते हैं भगवान का यही निश्चय हमको सब प्रमाण लगता है स्वतंत्र है। दूसरी जानना है यह भी कर्तव्य तो नहीं है ये व्यापार की बात है हमको कुछ ऐसा व्यापार का लाइन बता दो उस लाइन पर हम पढ़ जाए तो हमारी दरिद्रता दूर हो जाए यह भी आपको कर्तव्य नहीं है क्योंकि यह भी हमको परिश्रम का हेतु है। अगर हम बनाएंगे फिर आपको क्या आपको तो कुछ पराक्रम अनुसार होगा चलो आपको ये बाधाएं बता दी आप कुछ कमाई करने के बदले नुकसान और कर देंगे आपका प्रारब्ध ही कुछ ऐसा है एक ही व्यापार एक ही साथ दो व्यापारी खरीद करता है तो तीन साल का नुकसान होता है दूसरे को होता है एक साथ लिया हुआ एक ही भाव में लिया हुआ एक ही दिन लिया हुआ एक दो बार होता है इसको नुकसान होता है तो कि ये तो नसीब की चीज होती है प्रारंभ की चीज होती है तो उसमें क्या कि गड़बड़ हो जाने से आपका प्रारंभ ठीक नहीं चल रहा है क्या जानते चाहूंगा कि आपका पूर्व कर्म का जो नसीब है प्रारंभ और ठीक नहीं चल रहा है कुछ भी करने के बाद तक भी उसमें आ जाओगे और पर अगर हम लोग अपना आप बताते तो हमको भी तकलीफ हो जाती है हमने बताया और तकलीफ हो गई ऑपरेशन तो हमको ऑपरेशन का कारण बन जाएगा आपके तो विकल्प बढ़ेंगे हमारे विकल्प बनने का वो कारण बन जाएगा तो दोनों के लिए नुकसान का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमको परिश्रम का हेतु है हमको व्यवहार का परिश्रम देकर के व्यवहार अपना व्यवहार निभाना यह इस जीव की सदवृत्ति का बहुत ही अल्पत्व बताता है। ज्ञानी को परिश्रम देकर के अपना व्यवहार निभाना ये जीव की सदवृत्ति का बहुत ही अल्पत्व बताता है तो संवृत्ति नहीं है असर व्यक्ति है ऐसा कहते हैं हम ज्ञानी को विकल्प में क्यों डाले हमारे कारण से हम ज्ञानी को विकल्प में डाले तो संवृत्ति नहीं
क्योंकि हमारे कारण से परिश्रम करके भी आपको व्यवहार चलाए देना पड़ता हो तो भी वह आपको हितकारी है और हमको ऐसा दुष्ट निमित्त का कारण नहीं है। अगर हमारा व्यवहार चलाना हो और आप उसका परिश्रम करें तो आपको उतना नुकसान नहीं है, आप कर सकते हो। हमारे लिए आप करें तो हमको उतना नुकसान नहीं होगा, क्यों कि हमको इसमें मदद नहीं है, इसलिए हमको तो नुकसान नहीं होगा। ऐसी हमारी जो समस्त स्थिति है कि हमारा व्यवहार चलाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़े तो हमको नुकसान नहीं हो सकता है। और आपको हितकारी है, आपको तो लाभ का कारण होगा और हमको नुकसान का कारण होगा। देखो क्या उद्देश्य की बात है। फिर भी ऐसी स्थिति होने पर भी हमारे चित्त में ऐसा विचार रहता है, फिर भी हमको हमारे चित्त में ऐसा विचार रहता है कि जहां तक हमको भी परिग्रह का लेन देन करना पड़ता हो हमारा व्यवहार निभाने के लिए, ऐसा व्यवहार हमारे को हृदय में होता हो वहां तक यही कार्य स्वयं को भी करना, यह कार्य हमारा कारोबार का कार्य दूसरे से हम नहीं कराएंगे, हम सही नहीं करेंगे, दूसरे से वो कार्य कराएंगे नहीं। आप भले ही करना चाहो, आप भक्ति से भावना से करना चाहोगे तो भी हमारा विचार ऐसा रहता है कि ये कार्य हमको खुद को कर लेना चाहिए, हमारा काम तो हमें खुद को कर लेना चाहिए, दूसरे से नहीं कराना चाहिए। यह खुद ही यह कार्य करें अथवा व्यवहारिक संबंधी के मार्फत करें, मनुष्य के मार्फत हम नहीं करेंगे। क्या हमारा बिजनेस का काम होगा तो हम हमारे पार्टनर से, हमारे स्टाफ से या हमारे कोई संसार संबंधी जान पहचान वाले से कराएंगे, मनुष्य से नहीं कराएंगे। क्योंकि हमारा आपका जो संबंध है वो धार्मिक संबंध है, सांसारिक संबंध नहीं है, इसलिए। परंतु यह संबंधी मुमुक्षु पुरुष को तो परिश्रम देकर के नहीं करता, ऐसा हमारा बिजनेस संबंधी कोई कार्य हो तो मुमुक्षु को परिश्रम देकर के हम कराएं, ऐसा हम चाहते नहीं। क्योंकि ऐसा करने से, इस कारण से जीवों को मलिन वासना अनुभव होती है। मलिन वासना क्यों? तो बार बार भी होगा, कितना क्या और कर दो, थोड़ा किया तो और कर दो, और ला दो, ये बात हो जाएगी। तो ये जो निष्प्रता है वो नहीं बने रहेंगे, ज्ञानी हमेशा हमेशा निष्प्र होते हैं। तो ज्ञानी का लक्षण जिसके अंतरंग में स्प्रवा हो, मन में कुछ वांछा हो कि मेरा वो कार्य वो कर दे, वो कार्य वो कर दे, वो कार्य वो कर दे, मुमुक्षु से अगर वो ज्ञानी काम कराता है तो उसकी स्प्रवा बढ़ जाएगी, वो ज्ञानी है हो सकता नहीं है, वो ज्ञानी बना बिक जाएगा, अज्ञानी हो जाएगा। अगर ज्ञानी होगा तो ऐसी बात तो है, मामूली लगती है, लेकिन स्प्रवा वाली बात है वो अच्छी नहीं है। क्योंकि वो मलिन वासना उस कारण से उद्भव होना संभव है। कदापि हमारा चित्त शुद्ध ही रहे ऐसा है, हमारे चित्त को, मन को, आत्मा को कठोर करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा चित्त तो कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो शुद्ध ही रहेगा, उसमें मलिन वासना नहीं होगी। तथापि यह काल ऐसा है, देखो तथापि यह काल ऐसा है कि यदि हम यह शुद्धि से से भी रखते हैं तो अगले जीव को विषम का उद्भव न हो और अशुद्ध वृत्तिमान जीव भी ऐसा व्रत कर परम पुरुषकाम मार्ग को नाश कर ले। क्या कहते हैं, यदि हम तो शुद्धिपूर्वक आत्मशुद्धिपूर्वक ब्रज से मैंने बाहर लेन देन से भी कुछ रख लेते हैं आपके पास, आप हमारा काम करें या कुछ भी कर रख लेते हैं, तो सामने वाले जीव को विषमता नहीं उत्पन्न होगी, इसके परिणाम बिगड़ेंगे और शुद्ध वृत्ति वाले जीव को भी क्या होगा, हमारा अनुग्रह दूसरा करने लगेगा। हम तो शुद्ध वृत्तिमान है, हमको नुकसान नहीं होगा, लेकिन दूसरा कोई अशुद्ध वृत्तिमान भी होगा तो ऐसा वर्तन करके जो परम पुरुष का सन्मार्ग है उस सन्मार्ग का नाश करेगा। एक परंपरा चल जाएगी, जैसा हम करेंगे वैसे ही परंपरा चल जाएगी। इसी कारण से भी हमारी आत्मशुद्धि मजबूत है, फिर भी हम बाहर में इस प्रकार के द्रव के लेन देन किसी से रखते नहीं और रखेंगे भी नहीं। ये यहाँ विचार पर हमारा चित्त रहता है, ऐसा अभिप्राय है हमारा चित्त, हमारा विचार चलता है। तो फिर जिसका हमारे से परमार्थ बल या चित्त शुद्धि कम है, हम इतने बलवान हुए होते हुए भी आगे पीछे का विचार करके हमारे जो कपाल प्रकार है वो ठीक रखते हैं लेन देन का, तो जिसका इतना आत्मशुद्धि नहीं है या विचार बल भी नहीं है, आत्मकल्याण का बल उसको नहीं है, उसको परमार्थ बल कहते हैं, उसको कम होता है, उसे तो जरूर यमो मार्ग बलवान होने से रखना, उसको तो जरूर इसका दृढ़ता रखनी चाहिए, यही उसका उसने ही उसका बलवान श्रेय है। और आप जैसे मनुष्यों को अवश्य ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आपका अनुकरण सहजे दूसरे मनुष्यों को ही प्रेरित का कारण हो सकता। प्राण चले जाए ऐसी विषम अवस्था में भी आपको निष्काम का ही रखने कटारत मैंने होने योग्य है। प्राण चले जाए तो भी निष्कामता रखना ही आपका धर्म है, ऐसा हमारा विचार है। आपको आजीविका से चाहे जैसे प्रकार के दुख की अनुकंपा करके जता भी हमको मिटता नहीं है, हमारा ये विचार नहीं मिटता है, हमको दया नहीं आती आपके इसमें, क्या लिखते हैं आपके दुख की हम दया खाते हैं नहीं, हमको ऐसी दया नहीं आएगी, क्यों तो आपको दुख मिटाने की दया नहीं आएगी, आपको कल्याण आत्मकल्याण में छुट्टि हो जाएगी इसकी हमें दया आती है, दो प्रकार की दया होती है। इसलिए हमारा विचार तो और बलवान होता है कि आप तो कुछ मदद नहीं करेंगे, क्या अनुकंपा के वश भी आपको मदद नहीं करेंगे, दया के खातिर भी नहीं करेंगे, हमारा मजबूत विचार है कि आपको बिल्कुल हम मदद नहीं करना है, आपको परमार्थ के मार्ग में ले जाना है, आपका पुरुषार्थ हम तीव्र करेंगे, मदद नहीं करेंगे लेकिन पुरुषार्थ को तीव्र बना देंगे। इस विषय पर आपके विशेष कारण देकर भी दृढ़ निश्चय कराने की इच्छा है और होगी, ऐसा हमको निश्चय रहता है। ज्यादा हो गया मार्गदर्शन तो इस प्रकार का है कि जीव को अनुकूलता प्रतिकूलता में मनुष्य जीव को इस प्रकार के आधार बुद्धि से अनुकूलता नहीं करनी चाहिए जिससे आत्मकल्याण के मार्ग से चुप हो जाए, ये अभिप्राय है। उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं।